وسخر لكم الليل والنهار और उसने मुसखर कर दिया तुम्हारे लिए रात को और दिन को। ऐ रब हम तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा कर। तो यही अल्लाह रोपी कुमार तो कभी बान अल्लाह कितना कुछ तूने हमारे लिए किया। और अभी आगे तो बस बात ही खत्म कर दी गई ना, जी अभी हम आगे देखते ना इसका क्लाइमेक्स आगे आयत जो आ रही। तुम्हारे लिए रात और दिन का निजाम चला है, पूरा एक सिस्टम है रात और दिन का, इतनी बड़ी मशीनरी चल रही है भाई, छोटी बात तो नहीं है। अंधेरा घुप हो जाना, फिर उसी आसमान के ऊपर रोशनी हो जाना, फिर अंधेरा हो जाना, फिर और इतनी सिस्टमेटिकली एक एक मिनट एक एक सेकंड उस सुबहान अल्लाह एक एक सेकंड यानी आप पिछले साल का और उसे पिछले साल का और उसे पिछले साल का आज का दिन का टाइम निकाल के देख ले, फजर का सेम होगा, जोहर का सेम होगा, असर का सेम होगा, यानी आप उस पूरी सूरज की मूवमेंट आज के दिन की सेम है। कल के दिन की आप निकालेंगे तो वो जो एक एक मिनट का फर्क पड़ता है वो कल के दिन का और पिछले साल का और उससे पिछले साल का और 100 साल का, वो सब एक ही होगा। वो किसने इतनी प्रिसीजन दे दी सूरज को, किसने रात को दिन को, किसने निकलने और इनके जाने का टाइम फिक्स कर दिया, किसने ये चला दिया निजाम शम्स और कमर का, दिन और रात का। सखर लकुम, वो सखर कर दिया तुम्हारे लिए। सखर कर दिया का मतलब ये नहीं है कि हमारे कंट्रोल में दे दिया, हम जब चाहे स्विच ऑन और ऑफ कर रहे हैं रात और दिन के, ये नहीं मतलब है। वो सखर करने का मतलब ये है तुम्हारे फायदे के लिए बना दिया, दे आर वर्किंग फॉर यू, दिन और रात मेरे लिए चल रहा है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। सूरज ये मेरे लिए निकला हुआ है, ये चांद मेरे लिए निकला हुआ है। चांद को देखते हैं शायरी करते हैं, चांद सा चेहरा, चांद को देख के खुश होते हैं, कभी ये सोचते हैं ये चांद को निकालने वाला मेरा रब है जिसने मेरे लिए इसको निकाला। अल्लाह अकबर, ये रात मेरे लिए आई ताकि मैं सो जाऊं आराम कर लूं। वजालना नौमकुम सुबाता वजालना लैला लिबासा वजालना नहारा माशा, किस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया फिर भी ना सोचोगे उसके बारे में, फिर भी ना कहोगे कि मैं उसके लिए अपना वक्त निकालूं, उसके लिए अपनी सलाहियतें लगाऊं, उसको अपना आप दे दूं जिस रब ने मेरे लिए ये सब कुछ कर दिया, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी भी दे दूं तो ऐ रब तेरा हक नहीं अदा हो सकता, तूने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। ना सिर्फ मुझे इतनी एक हकीर बोन से इंसान बना दिया, जब हम बेबी को देखते हैं ना तो इतना प्यार आता है, हम उसके सिर्फ बाहर में देख रहे होते हैं, बाहर इसकी आंखें हैं देखो, बहुत भी सोच लेते हैं तो अच्छा अल्लाह ने आंखें बना दी, अच्छा अल्लाह ताला ने देखो इसको कैसा चेहरा बना दिया ऐसे। लेकिन आपको पता उस बाहर से अंदर अंदर के जो सिस्टम्स है ना वो तो बाहर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बाहर से भी ज्यादा कहीं बड़े बड़े सिस्टम है जो उसके अंदर चल रहे होते हैं। अब वो साइंसदानों ने बताया अल्लाहु अकबर के जितने हमारे अंदर सिस्टम है इनको अगर बाहर आपने लगाना हो ना, मतलब खून साफ करने का, सांस लेने का, ये जो डाइजेशन का जो डाइजेशन को क्या कहते हैं यानी हाजमे का जो सिस्टम है और जो जो ये जितने भी सिस्टम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है हमारा, जितना भी जितने सिस्टम्स हमारे अंदर चल रहे हैं ना वो उनको अगर बाहर आप फैक्ट्रीज लगाएं उसकी तो आपको कितनी लेबर चाहिए होगी, कितनी मशीनें चाहिए होंगी, कितना कुछ चाहिए होगा उनको करने के लिए। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह ताला ने हमें अंदर दे दिए वो क्या पे किया हमने और क्या हमने इसके लिए कहीं रिक्वेस्ट की थी। हम तो बाहर की मांगते हमारी फैक्ट्रियां लग जाए, हमारे तो अपने अंदर इतनी फैक्ट्रीज लगी हुई है, छोटे से बच्चे के अंदर छोटे से जिस्म के अंदर सारे सिस्टम चल रहे हैं, सुभान अल्लाह। और रात और दिन आ रहे हैं जा रहे हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारी नींद इस वक्त हो जाए, इस वक्त तुम उठ के काम कर सको, तुम्हें रात को तुम्हें सुकून चाहिए, तुम सुबह के थक गए होगे, लाइट्स ऑफ कर दी गई, हलचल खत्म कर दी गई, हरकत बिल्कुल स्टॉप कर दी गई। अल्लाह अकबर, सूरज है वो इतना चमकदार है ताकि तुम्हें कोई लाइट की जरूरत नहीं, तुम अपने काम आसानी से करो, चांद है जिसकी धीमी रोशनी है। अल्लाह अकबर, वन्नुजूम मुसख्खरातुम बि अम्री, और तारे मुसख्खर किए गए उसके हुक्म से। इस तारे भी तुम्हारे काम में मुसख्खर किए गए, मतलब क्या? अब आपको समझ आ गई क्या मतलब है इसका? मतलब तुम्हारे काम में लगा दिए गए, तुम्हारे फायदे के लिए बना दिए गए, वो तुम्हें सर्व कर रहे हैं, मतलब समझ आ गई, तुम्हें सर्व करने के लिए। अब कोई कहता ना मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ मिला नहीं, हम रोता है धोता है, वो तुम्हारे लिए तो कितने, तुम दौलतमंद हो, तुम्हारे लिए तो तारे चमक रहे हैं, सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है, रात दिन आ जा रहे हैं, तुम कहते हो मैं गरीब हूं है? तारों का निजाम चलाया तुम्हारे लिए। आपको पता है तारों से लोग सहराओं में भी रास्ता देखते हैं, समुद्रों में भी रास्ता देखते हैं। इनके जरिए पुराने जमाने में लोगों के पास टाइम नहीं होता था, तो इवन रात के वक्त, अब दिन में तो ठीक है पता चल जाता है सुबह का वक्त है, दोपहर का है, शाम का, रात को कैसे पता चले कि रात कितनी गुजर गई कितनी, वो भी तारों से देख के उनको पता चलता था कि ये तारा यहाँ था, ये यहाँ पे होगा, तो ये टाइम है। सुभान अल्लाह। तो ये इसके लिए तुम्हारे लिए पैदा किए गए, ये लेकिन इसके लिए नहीं पैदा किए गए कि आप अपने हॉरोस्कोप देखने शुरू कर दे, तारों से अपने मतलब मेरा सितारा क्या कहता है, मेरा सितारा गर्दिश में है, मेरा सितारा ये गलत बातें हैं, ये शिरकिया बातें हैं। सितारे हमारी तकदीर के मालिक नहीं, अल्लाह हमारी तकदीर का मालिक है। खुदा के लिए इससे निकल आए। तुम्हारा स्टार क्या है? अच्छा, इसका स्टार इसे मैच करता है कि नहीं? उसकी शादी इसके साथ होने लगी है, उसका सितारा कौन सा है, इसका सितारा कौन सा है? कम अज कम कुरान पढ़ने वालों ये चीजें छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इल्म नुजूम हासिल किया उसने जादू का एक हिस्सा हासिल कर दिया, ज्यादा ले ले जा थोड़ा, ये जादू की किस्म है। और जादूगर को पता है कि इतना बड़ा कबीरा गुनाह जादू करना, ये इस तरह की, आजकल तो खैर इसको इतना प्रमोट किया जाता है, टीवी पे भी बिठा दिए और हर जगह ही सितारों को देख देख के बता रहे हैं, और लोगों को भी बड़ा शौक होता है पूछने का कि हम बताएं हमारे साथ क्या होगा, आज का दिन मेरा कैसा गुजरेगा, झूठ का पलंदा सारा। अगर इसमें कोई सच्चाई हो भी तो जादू भी तो बरहक है, लेकिन हमें कहा गया ये हराम है जादू करना, इसी तरह ये हराम है ये सारा इल्मे नजूब का, ये सारा चीज हराम है। क्यों इसके अंदर पढ़ के हराम में पढ़ रहे हैं, क्यों अपने गुनाह बढ़ाते हैं, क्यों इसके ऊपर यकीन रखते हैं? क्या अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है? सितारे ही आप मेरी किस्मतों को अच्छा या बुरा करेंगे, सितारे गर्दिश में आएंगे तो मेरे 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 साथ बुरा हो जाएगा, नहीं तो आपने तो अल्लाह ताला का फैक्टर ही निकाल दिया ना। तो आपको वो हदीस नहीं याद है कि जब रात को बारिश हुई तो आपसे सलम ने फरमाया इसके बाद कुछ लोग तो काफिर हो गए और कुछ लोग ईमान वाले, जिन लोगों ने कहा कि ये बारिश फलां फलां सितारे की वजह से हुई वो काफिर हो गए, जिन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से है तो वो ईमान वाले रहे। यानी इसका मतलब है कि सितारों की तासीर समझना, ये समझना कि वहां पे तो बारिश हुई तो कहा गया, क्योंकि उनका अकीदा था इस तरह इस किस्म का मुशरिकीन का कि फलां सितारे की वजह से बारिश हो जाती, जो भी तासीर समझता है ना कि कोई इफेक्ट है इसका, वो शिर्क करता है, और ये हदीस इसको वाजे करती है। तो क्यों ये समझते में ना, हाँ मेरे सितारा ही सही नहीं है आजकल तो फिर इसलिए मेरे साथ ये नुकसान हो गया, आज मेरे सितारे बड़े उरूज पे हैं, अब तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो इसका मतलब आप इफेक्ट समझते हैं ना सितारे का। तो इन चीजों को छोड़ दें, अपने अकीदे को खालिस करें, शिर्क से पाक करें, वरना कुछ नहीं मिलेगा आखरत में, अगर तौहीद के अंदर मिलावट करके ले गए तो। इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमी याक़िलून, इसमें भी निशानियां उस कौम के लिए जो अक्ल रखती हो, अक्ल करो अक्ल। तो तफक्कुर में तो बड़ा गौर फिक्र करना पड़ता है आपको, वो इसके साथ पीछे नॉलेज होना चाहिए तो फिर तफक्कुर होता है, गौर फिक्र होता है, लेकिन अकल तो इंसान कर सकता है ना, अकल तो इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को दिन को देख के, सूरज चांद को देख के, तारों को देख के, अल्लाह ने मेरे काम में लगाया हुआ है, अकल इस्तेमाल करो तो इसके फायदे समझ आते हैं कि ये कितने फायदे के लिए है। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्दि मुख्तलिफन अलवानुहु, और जो उसने फैला दी तुम्हारे लिए जमीन में मुख्तलिफ रंग, सुभान अल्लाह, इतने इतने रंगों की चीजें, रंग बिरंगी चीजें, अल्लाह हू अकबर। ये वो कहते हैं कि ये जो आप सूट वगैरह खरीदते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सूटों के रंग भी ना ये लोग जाके नेचर से देखते हैं और फिर वहां से देखते हैं कि किसका किससे कंट्रास्ट करें। ये जो पेंटिंग करते हैं या जो फैब्रिक को रंग देते हैं, क्योंकि इंसान की अकल में नहीं आ सकती। अल्लाह ताला ने कितने प्यारे रंग बिखेरे हैं और कंट्रास्ट कितना खूबसूरत है। ऐसे नहीं कहीं पे भी लगता है बेढंगा सा, ये तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा, ऐसा कहीं नहीं है। घास को ग्रीन बनाया तो वो सूदिंग है, रेड होती तो सूद ना करती आंखों को। आसमान को पीला कर दिया जाता तो वो कैसा लगता, कितना अजीब होता। नीला है ना, ऐसे उसकी तरफ देखते हैं तो सुभान अल्लाह ऐसा सुकून आता है। और काला होता तो क्या होता, कोई भी हमारा, कोई भी हम कहें हमारा ये फेवरेट कलर, किसी भी और कलर का होता तो क्या होता। तो रंग अल्लाह ने बिखेरे, और रंग भी जो है वो भी देखिए हम, हाय अल्लाह अकबर, हम तो ना अल्लाह के हुक्म भी मांगते हैं ना, तो ये पूछ पूछ के मांगते हैं। फर्ज है कि नफल है, सुन्नत है कि क्या है, यानी फर्ज है तो करूंगी, बाकी है तो फिर चलो छोड़ो, अब इनको क्या करना। अल्लाह ताला ने देखे सुभान अल्लाह, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी फर्ज तो नहीं था कि रंग होते, ब्लैक एंड व्हाइट में भी हम जिंदगी गुजार सकते थे। ये हमारी सस्टेनेंस तो कोई इफेक्ट नहीं करना था। ब्लैक एंड व्हाइट होती दुनिया, कईयों का विजन हो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट, तो फिर भी सर्वाइवल के लिए तो मुश्किल नहीं था, सर्वाइव तो हमने फिर भी कर जाना था। फर्ज तो नहीं था कि हमारे लिए रंग ही होते तो फिर हम रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे लिए इतना इंतजाम किया कि तुम्हें अच्छा लगे यहाँ रहना, तुम देखो तो वो तुम्हारे इर्द-गिर्द बिखरे हुए मनाजिर तुम्हें खुश कर दे, तुम देखो तो तुम्हें मजा आ जाए देखने का। अब कोई बिल है क्या आसमान की तरफ देखने का, कोई बिल है क्या हरे भरे पौधे और फसलें और फूल देखने पे, हाँ? कोई बिल है नहरे और समुंदर देखने, और रंगा रंग की चीजें, जानवर उठा ले और आप नबातात उठा ले और आप नेचर के जितने सीन्स हैं वो उठा ले और आप आसमान और जमीन की जिधर देखे ऐसे लगता है कि किसी ने इतनी प्यारी सीनरी पेंट की हुई है, कोई पेंटिंग है। हर कलर दूसरे से मुख्तलिफ, और एक एक कलर के कितने कितने बेशुमार शेड्स, हर शेड दूसरे से मुख्तलिफ, हर दरख्त रंग दूसरे रंग से, दूसरे के रंग से मुख्तलिफ, किसी का ग्रीन कैसा है किसी का किसी और तरह का। एक नजर आप जब डाल रहे हैं ना, एक नजर देखें आप बाहर और देखें कि आपकी नजर में कितने बेशुमार रंग आए हैं, कितने बेशुमार रंग, इनको गिने और इनको लिखें तो कितना मुश्किल हो लिखना, अल्लाह हू अकबर, कितना मुश्किल हो लिखना। जो मंजर हमारी आंखें देखती हैं, जो कलर्स देखती हैं, उनका अहाता करना भी हमारे लिए, उनको अल्फाज में लिखना भी हमारे लिए मुश्किल, अल्लाह हू अकबर। तो वो हमारा विजन ब्लैक एंड व्हाइट कर देता, क्या फर्क पड़ता था, कोई ब्यूटी नहीं होनी थी। अगर जिंदा हमने रहना था तो उसके लिए फर्ज नहीं था हमारे लिए ये करना, ऑप्शनल। हम उसकी इताअत करें देख देख के फर्ज है कि नहीं, और वो हमें दे ये देखते नहीं कि फर्ज है कि नहीं, ऐसे ही खुला दिए चला जाए, क्योंकि तू रब है, तेरी तो शान बुलंद है और हम हकीर, हम ऐसे ही हैं वाकई। एक-एक डॉलर भी देंगे तो गिन गिन के तेरे रास्ते में, नमाज भी पढ़ेंगे तो देख देख के फर्ज अदा हो गया ना बस काफी है, रोजे भी रखेंगे तो फर्ज हो गया ना बस काफी है, इससे आगे हमसे नहीं होता। हर चीज पूछ पूछ के फर्ज है, ये फर्ज है, हाँ तो तुम्हारा क्या ये कलर्स देखना फर्ज था, तुम्हें भी अल्लाह ताला ब्लैक एंड व्हाइट ही बना देता सब कुछ, कौन सा फर्ज था तुम्हारे लिए कि तुम रंग रंग की दुनिया देखो। और रंगों के अंदर सिर्फ यहाँ पे अलवान इस तरह से ना आप सोचे, बल्कि रंग रंग में जायके फर्क, खुशबुएं फर्क, शक्लें फर्क, डाइवर्सिटी कितनी है, खसूसियात फर्क, जिंस फर्क, एक ही रंग का आप तीन चीजें रख लें, एक नमक है, एक चीनी है, एक जहर है, तीनों के रंग सफेद हैं। अल्लाह अकबर। हाँ तो ये फैली भी है कायनात तुम्हारे लिए, इससे तुम कुछ सोचो, कुछ समझो, कुछ गौर करो। इन्ना फी ज़ालिक लआयतल्लि क़ौमी यत्तज़क्करून। इसमें नसीहत है, नसीहत पाने वालों के लिए इसमें निशानी है, सोचने वालों के लिए, नसीहत लेने वालों के लिए, कुछ इससे सीखने वालों के लिए। तफक्कुर करें खल्क में, खालिक में ना करें, मखलूक के बारे में गौर व फिक्र करें। खालिक के बारे में गौर व फिक्र करने से मना किया गया है, एक खालिक के बारे में सोचना शुरू कर दें कि हाँ कैसे हो गया, इसको तो सारों को पैदा किया उसने, तो उसको किसने पैदा किया, ना उस बिला, इस तरह की बातें नहीं सोचनी, इससे इंसान गुमराह हो जाता है, वो कैसे हमेशा से है, कैसे है, इसको नहीं सोचना, बल्कि मखलूक में गौर व फिक्र करके खालिक तक पहुंचना। क्योंकि खालिक में गौर व फिक्र आप करेंगे ना, तो वो आपकी लिमिट से बियॉन्ड है, बियॉन्ड, जिसकी जन्नत ही ऐसी है, मुझे बताएं कि उसका तसव्वुर नहीं आप कर सकते, वो रब कैसा होगा, जिसकी एक मखलूक है जन्नत, जो भी कह ले मखलूक है, जितनी भी परफेक्ट है मखलूक है, मखलूक का भी आप अगर तसव्वुर नहीं कर सकते, उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, खालिक को कहां से कर सकते, वो तो नहीं आप पहुंच सकते उस तक। इसलिए हम उसकी मखलूक से उसको पहचानते हैं कि वो कैसा रब होगा। देखिए जिसने जमाल को पैदा किया ना, ब्यूटी को, वो खुद कैसा होगा बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जमील है और वो जमाल को पसंद करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ब्यूटी, जो ब्यूटी को पैदा करने वाला है वो कितना खुद ब्यूटीफुल होगा। इसीलिए तो लोग जब उसको देखेंगे ना, उसका दीदार करेंगे, तो कहेंगे हाय जन्नत की हर नेमत पीछे है, बस अल्लाह का दीदार ही होता है। सुभान अल्लाह। वह अल्लाह सखर अल बहर, और वही है जिसने मुसखर कर दिया समंदर को। अब आप क्या माना लेंगे मुसखर करने का यहाँ पे, ये नहीं कि मतलब समंदर मेरी कंट्रोल में है, मैं जितर मर्जी समंदरों को लेकर जाऊं। मुसखर करने का क्या माना लेंगे, तुम्हारे फायदे का बना दिया, इसमें इतने फायदे हैं तुम्हारे लिए, ऐ कितनी बड़ी बला है समंदर, बिफरा हुआ हो तो इंसान डर जाता है, और चढ़ने पे आए तो सुनामी की सूरत में बस्तियों को निगल लेता है, लेकिन उसने हुक्म इसको दे दिया, इसको एक दफा समझा दिया कि तूने इंसानों के काम का बनना है, उनको नुकसान नहीं देना, तो ये है मुसख्खर करना उसका। जब इंसान बिगड़ती है ना, तो कायनात का निजाम भी बिगड़ जाता है, इसीलिए फिर वो सुनामी बनता है, फिर इंसानों को डबोता है, फिर इंसानों के ऊपर चढ़ जाता है, फिर उसका गुस्सा होता है। लेकिन अदरवाइज अल्लाह ताला ने इसको फायदे के लिए बनाया। लिताकुलू मिनहा लहमन तरियन, ताकि तुम इससे खाओ गोश्त ताजा। देखिए एक तरफ अनाम बना दिए ताकि हम वहां से गोश्त भी ले, फिर एक तरफ हमारे लिए समुंदर है। अब देखिए इतना बड़ा समुंदर फ्री है, उसके अंदर से आप निकालते जाएं गोश्त खाते जाएं, कोई बिल नहीं है इसका, खाते जाओ निकालते जाओ खाते जाओ, जितना मर्जी निकालो, भरा पड़ा है समंदर मछलियों से, सब तुम्हारे लिए हलाल। तो फ्रेश गोश्त, ये भी नहीं कोई फ्रोजन नहीं है, पुराना फ्रीज कर करके स्टोरेज में रख रख के नहीं दिया, ताजा। कैसे अल्लाह ताला ने निजाम बनाया ना, कि यानी आप डी फ्रीजर से नहीं निकाल रहे, उसकी फिर अलग बात हो जाती, एक होता है फ्रेश, निकाला खा लिया। अल्लाहु अकबर। और इसका फायदा वो भी उठा रहा है जो अल्लाह को मानता है, और वो भी उठा रहा है जो अल्लाह को नहीं मानता, और वो भी उठा रहा है जो उसके साथ शिर्क करता है, और जो एथीस्ट है, और जो उसकी नाफरमानी करता है, और जो कह उसके ऊपर बातें बनाता है, सब उसके समुंदर से फायदे उठा रहे हैं। अतस्तखरिजू मिन्हु हिलयतन तलबसूनहा, और तुम निकालो इससे, इसलिए बनाया ली सारों के लिए, ली जो पहले आ गया ना लीता कुलू में, वो ही आगे के लिए भी है कि ली तस तखरीजू तक, और ताकि इसलिए कि तुम निकालो इसमें से जेवर तुम पहनते हो, जेवर की फैक्ट्री भी वहां लगा दी। जेवर अब आपका मोती मूंगे ये लूलू मरजान वहां से कैसे, अल्लाह ताला ने उनका निजाम बनाया कैसे, वो बनते हैं सुभान अल्लाह। पानी का कतरा सीप के मुंह में जाता है तो वहां पे वो पर्ल बनता है। आपने पर्ल, आप लोगों ने भी तो बनाए ना इंसानों ने, तो आपके पर्ल्स कैसे हैं? और जो समुंदर में अल्लाह ने जो वो पर्ल्स बनाए हैं उनकी क्या बात है। इसीलिए तो उनको इतना एक्सपेंसिव होते हैं, उनको इतने ध्यान से रखा जाता है, जो प्योर होते हैं। सुभान अल्लाह, तो तुम्हारे लिए जेवर का भी इंतजाम कर दिया। अब जेवर भी क्या इंसानों के पहनने जरूरी थे क्या? जेवर पहनते खाते भी थे, बस ये था गोश्त था खा लिया और पानी पी लिया और हवा है कि आपने हवा ऑक्सीजन ले ली। अब इतनी ज्यादा चीजें क्या फर्ज थी आपके लिए क्या आपको जेवर भी पहनाए जाए? फर्ज नहीं थी, इसके बगैर भी आप इस जिंदगी में रह सकते थे। लेकिन उसने एक एक चीज का ख्याल रखा, एक एक चीज को आपके लिए बनाया। एक एक चीज के अंदर कितनी मोहब्बत है, कितनी खूबसूरती है, कितना दिल को बहलाने का सामान है। अल्लाह हू अकबर। अब जब ये नेमतें पा लेते हैं ना, तो हमें भी फिर जब फरमाबरदारी उसकी करनी है, उसकी तरफ जाना है, तो हमने भी देख देख के नहीं काम करने, पूछ पूछ के नहीं करने कि किसी तरह मैं इससे निकल ही जाऊं। हमने भी जैसे अल्लाह ताला ने दिल खोल के हमें दिया, हमें भी दिल खोल के उसकी इबादत करनी है। वतरल फुल्का मवाखिरा फी, और तुम देखते हो कश्तियों को कि फाड़ने वाली है इसमें, इसमें किसमें, बाहर में, बाहर को फाड़ के जाती हैं। देखा नहीं आपने उनके आगे कैसे चोंच सी है, आगे से कैसे होती हैं, क्या शेप होती है उनकी, वो फाड़ती चली जाती हैं समुंदर को, चलती चली जाती हैं, काटती भी पानी को। तो कभी आपने सोचा कि क्या बात है कि कश्ती चल सकती है और डूब नहीं रही इस समुंदर के अंदर, सोचा कभी? इसका मतलब किसी ने तो उसको हुक्म दिया ना इस समुंदर को कि तुमने डबोना नहीं है। किसी ने तो इसको कोई लॉज इसके बनाए हैं और उसको बाउंड किया है कि आपने इन्हीं लॉज को ओबे करना है, तभी तो इन कश्तियां चल सकती हैं। अगर तो वो समंदर भी हमारी तरह कह दे मुझसे नहीं होता, ये तो अब काबिले अमल ही नहीं, अब मैं इतने अरसे से तो मान रहा हूं, अब तो नहीं मेरे से किया जाता, आज का जमाना तो कुछ और है, अब तो ये हो ही नहीं सकता, और उठा उठा के पटखा पटखा के फेंक के कश्तियों को तो क्या हो बताए। लेकिन वो ओबीडियंट है, उनको जब से अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया ये तुम्हारे लिए लॉ है, तुमने ऐसे चलना है, ये करना है और ये नहीं करना, वो वैसे ही चल रहा है। सूरज को भी हुक्म है, चांद को भी है, रात को भी है, दिन को भी। और आप देखिए रात और दिन और सूरज और चांद जो है ना अलग अलग मेंशन किए गए हैं, इसे उलमा कहते हैं कि अलग अलग चीजें इनको करार दिया गया है। ये नहीं कि सूरज ही है तो दिन है और चांद है तो रात है, ऐसे नहीं, रात दिन अलग चीज है और सूरज चांद अलग चीज है। तो हर चीज देखिए ओबीडियंट है, हर चीज मान के दे रही है, कोई चीज नहीं कह रही मैं तंग आ गई हूं ये कर करके उस वक्त से। अब देख लें आप, समंदर है, इतनी बड़ी बला है, 2/3 तो जमीन का पानी ही है, 1/3 है जिसके ऊपर सिर्फ खुश्की है। अब 2/3 तो चढ़ा है ना उसके ऊपर, कहे कि मैं तू यहाँ पे क्यों रहूं मैं, चलो। अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, जिस वक्त वो साहिल पे पहुंचती हैं तो दम तोड़ देती हैं, वापस चली जाती हैं, कौन उनको रोक रहा है वहां पे? कौन उनको वहां पे आके उनको इस पे मजबूर कर रहा है कि यहां पे बस तुम्हारी लिमिट है, इससे आगे नहीं तुमने आना? कोई जात तो होगी ना, वो जो समंदर पूरा पीछे तक इतना बिखरा हुआ आ रहा होता है, उसको यहां आके क्या हो जाता है? इसे पहचाने अल्लाह ताला को। अगर आप कहते ना फलां लॉ है, बहुत सारे लोग लॉज को बहुत वो करते हैं, फलां लॉ है उसके लिहाज से इसलिए सुई डूब जाती है, इसलिए शिप्स चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात, लॉ है, लॉ इस समंदर को इतनी अकल थी, इसने खुद ही अपना लॉ बना लिया। सूरज को बहुत अकलमंद है, चांद भी। चलो एक चीज छोड़े, सारी कायनात ही बहुत अकलमंद है। उन्होंने अपने खुद ही लॉज बना लिए, खुद ही उन लॉज को इतना ओबे करना शुरू कर दिया कि कभी उन अपने लॉ को तोड़ा ही नहीं। कैसी बातें करते हो, इंसानों को तो आज तक अपने फायदे के लॉज बनाने आए नहीं। एक लॉ बनाते हैं उसके बाद कहते हैं ये तो गलत था, ये हमारे फायदे का नहीं, अब एक और लॉ ले आते हैं, फिर वो पास करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं, ये नहीं, इसके ऊपर एक और लॉ ले आते हैं, फिर उसको शुरू कर देते हैं उसके ऊपर डिबेट करना, हर हुकूमत एक नया लॉ पास करने के चक्कर में थी। तो इंसानों तुम्हें तो इतनी अकल है, तुम तो अपने बना नहीं सके कोई ऐसे लॉ, ये सारों को इतनी अकल थी, सबने लॉज बना लिए और वो लॉज को ऐसा बाउंड होके उसके ऊपर चल रहे हैं कि कभी नाफरमानी ही नहीं करते। सोचो, दीज आर थिंग्स टू पॉन्डर, ये है चीजें, हम इनके ऊपर सोचेंगे ही नहीं तो कैसे आपको समझ आएगी। ये आयते ना, तो मैं पढ़ दूं तो ये तो यकीन करें ऐसी इनके 5-7 मिनट के अंदर पूरा सबक खत्म हो जाए, लेकिन अगर गौर व फिक्र करने लगो तो जिंदगियां गुजर जाएंगी इनके ऊपर। सिर्फ आपको मकसद ये होता है तफसीर के अंदर, सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आपको गौर व फिक्र करना सिखाना कि आप सीखें कैसे गौर व फिक्र होता है। वरना आए तो में कोई मुश्किल काम नहीं, किसने कोई कश्तियां नहीं देखी, किसने सूरज नहीं देखा, किसने चांद नहीं देखा, किसने रात, लेकिन हमने उन गाफिलों में से नहीं होना जो समंदर भी देखते हैं, बीच पे भी जाते हैं, पिकनिक भी करते हैं, बैठते भी हैं वहां पे, फिश भी खाते हैं, उनको बहुत कहते हैं फिश के तो इतने इसके फवायद हैं कि हद से ज्यादा, वो भी बड़े मजे से खाते हैं, सी फूड भी खाते हैं, और फिर वो इसी जमीन के ऊपर चलते फिरते भी हैं, लेकिन कभी भी उससे मालिक को नहीं पहचानते। मालिक, मालिक को पहचान ना इन चीजों के जरिए, ये कायनात उसने हमारे इर्द गिर्द सारी सजा दी है, कोई चीज तो है जो कि आपको उस तक पहुंचाए, कुछ तो हो, या कोई चीज भी नहीं पैगाम देती, कोई चीज ही नहीं उसका पता बताती, कभी तो ख्याल आ जाए चलो ये चीज देखी उस पे नहीं आया, वो देखी उस पे नहीं आया, कोई तो चीज हो, या तो बिल्कुल ही मर चुकी हो अंदर से, ये कहीं पे भी नहीं ख्याल आता, कहीं उसकी याद नहीं आती, कहीं उसकी शुक्र गुजारी नहीं आती। तो उसने ये कश्तियां बना दी, ये फाड़ती जाती हैं समुद्रों को, आप इस पे ट्रेवल भी करते हैं, पहले जमाने में तो जहाज नहीं थे, कश्तियों से ही लोग समुद्रों पे से सफर करते थे, तो समुद्र के ऊपर सोचे, समुद्र भी एक सवारी है, ठीक है, समुद्र के ऊपर सफर कर रहे हैं, इसकी पीठ पे सफर करते हैं और ये करने देता है, कश्ती अंदर डाल दो चलती चली जाती है, तो यही एक सफर होता है। आज भी अली तब तो मिन फदली था कि तुम तलाश करो उसके फसल से, आज भी आप देखें सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग है वो बायर नहीं है, सी थ्रू सीज है, कुछ समुद्रों की है ट्रेडिंग। आप देखें पोर्ट्स जिस मुल्क में होती है वहां पे तरक्की होती है, पोर्ट्स हासिल करने के लिए मुल्क दूसरे पे हमला करते हैं कि हमें पोर्ट मिल जाए, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रेडिंग का यही जरिया है, जहाज नहीं ले जा सकते इस तरह, बड़े बड़े जो कंटेनर हैं वो आपकी शिप्स लेकर जाते हैं। तो एक दिन भी समुंदर हमारी तरह का एटीट्यूड रखे ना तो हमारी तो ट्रेडिंग ही बंद हो जाए। आप देख लें पीछे जो कोरोना के अंदर सारे ये चीजें बंद हो गई थी तो कितनी मुश्किल हो गई थी, कोई चीज कहीं पे मिलना मुश्किल हो गई, स्टोर खाली हो गए, चीजें आ ही नहीं रही थी, तो इन्हीं समुद्रों के थ्रू आती है ना। तो अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत बना दिया, हो सकता था ये समुद्रों की जगह पे खुश्की सारी जगह होती तो यहाँ पे ट्रक इतनी दूर दूर चल के ना आ सकते, इतने लंबे सफर ना कर सकते, कितना भी बड़ा ट्रक बना ले इतना बड़ा नहीं बन सकता जितने बड़े जहाज, अल्लाह अकबर, कई कई जहाजों को मैंने देखा ऐसे हैं कि पहाड़ों की तरह खड़े हुए। वाकई अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया जो इनको पहाड़ों की तरह खड़े हुए जहाज, वाकई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अंदर बनी हुई है और उनके अंदर हर चीज, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या सामान और इंसान भी सैरें करते फिर रहे हैं इधर उधर, बहरी जहाजों से लोग पहले हज पे जाया करते थे, ऐसे सफर किया करते थे, सब बहरी जहाजों पे ही होते थे। अल्लाह तुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो, जरूरी नहीं था तुम्हें समुंदर देना अल्लाह को, अल्लाह ताला को जरूरी नहीं था, उसके ऊपर कोई फर्ज नहीं था कि तुम्हारे लिए ऐसा समुंदर बनाए, तुम्हारे लिए जेवर निकाले, तुम्हारे लिए उसके अंदर फ्रेश गोश्त का इंतजाम कर दे, तुम उसमें घूमो फिरो, आ जाओ आओ। अब देखें सेल बोट्स होती थी उसके लिए, ना पेट्रोल की जरूरत ना कुछ, ऐसे ही चल पड़ती थी। कितनी आसानी, कितनी मुफ्त की एक सवारी, क्योंकि समंदर है ना इसलिए। तो ये कश्तियां, ये सारे मोती मूंगे, ये सारी गोश्त और ये सब, ये इसका मतलब है कि ये वो चीजें हैं जिनको देख के हमारे अंदर शुक्र गुजारी आनी चाहिए। लअल्लकुम तशकुरून, शुक्र गुजारी आ जाए तुम्हारे अंदर। शुक्र गुजारी क्या चीज होती है पता है आपको, कि शुक्र गुजारी क्या है? एक्चुअली शुक्र गुजारी ना वो एहसास है कि बड़ा कुछ है मेरे पास, मालिक ने बड़ा अता किया हुआ मुझे। बस ये शुक्र गुजारी का पहला स्टेप है, समझ लें। इसके बाद और स्टेप्स हैं लेकिन फर्स्ट स्टेप ये है। और जो बंदा कहता है ना, हाय हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे तो कोई भलाई नहीं मिली, वो समझ लें कि पहला स्टेप ही उसने मिस कर दिया। वो शुक्रगुजार नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है। इसलिए शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के पास बहुत पैसा ही है तो उसके अंदर शुक्रगुजारी हो। ऐसे भी लोग देखे हैं कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और बस छोटे से एक झोंपड़ी के अंदर रहते हैं और कहते हैं नहीं मौला ने बड़ा करम किया है, रब का बड़ा एहसान है। तो शुक्रगुजारी इससे नहीं आती कि आपके पास कितना पैसा है, शुक्रगुजारी दिल के एहसास का नाम है कि आपको कितना एहसास है अल्लाह की नेमतों का। जिस दिन ये एहसास होगा ना, तो फिर बहुत तरह के हालात, मुश्किल हालात में भी आप शुक्रगुजारी रहेंगे। और एहसास खत्म हो जाएगा ना, तो आप महलों में भी रहते होंगे ना, और आपके बैंक बैलेंस वहां से वहां तक भी होंगे, तब भी आप यही कहेंगे कुछ नहीं जी हमारे पास तो कुछ नहीं, आए लुट गए मर गए सब हो गए। एक बात मैं बहुत नोट करती हूँ, जब भी हमारे मुल्क की खासतौर पे खबरों में दिखाते हैं, कभी वो उसका ईद, बड़ी ईद आती है तो उसके ऊपर बकरों को दिखा रहे होते हैं, कभी कुछ तो लोगों से जरूर पूछ रहे होते हैं, या बाजारों में जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं जी कैसा हाल चल रहा है क्या, तो वो तो आगे से कोई मुंह से नहीं कहता कि शुक्र है अल्लाह का। हर कोई कहेगा हाय मारे गए लुटे गए फलां हो गया ये हो गया मर, बस जी हम तो अगले साल फिर वो वही कह रहे होते हैं, उससे अगले साल भी कह रहे होते हैं, तो पिछले साल क्या था? पिछले साल तो शुक्रगुजारी फिर तुम्हें करनी चाहिए थी, अब तो इतनी जी महंगाई हो गई, अब तो ऐसे हो गया, अब तो इससे पहले क्या था फिर? तब तो शुक्र करते, तब भी तुम्हारे मुंह पे शिकायत थी, हमेशा ही शिकायत, कभी शुक्र होता ही नहीं। आप नोट करिएगा इस बात को, कभी नहीं को कहता शुक्र है अल्लाह का जी बहुत अच्छा गुजरा, शुक्र है मालिक ने बड़ा अता किया नहीं। और इसी नाशुक्री का नतीजा है कि आज क्या हमारे हालात है। जो नाशुक्रे होते हैं ना, अल्लाह ताला उनसे नेमतें छीन लेता है, जो शुक्र गुजार होता है ना, अल्लाह ताला उसको और देता है। भाई मेरी बात ऐसे ही नहीं है, आप देखिएगा गौर करिएगा इस बात को, और फिर हम अपने रवैयों को भी देखें, या हमारे रवैये भी ऐसे ही हैं। तो बस एहसास, पहले फर्स्ट स्टेप, अंदर 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 क्या है, अंदर से क्या आवाज आती है, यह आती है कि बड़ा कुछ मिला हुआ है, बड़ा ही कुछ मिला हुआ है, या ये आवाज आती है हाय कुछ नहीं मिला, हाय मेरे पास तो कुछ नहीं, ऐसी आवाज आती। सुनिए अपने अंदर की आवाज, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने शुक्रगुजार इंसान हैं। अगर नहीं है तो बहुत कुछ भी आपको मिल जाएगा ना, जो सारा कुछ जिनके आज रो रहे हैं वो भी मिल जाएगा ना, फिर भी इसी तरह रोते रहेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि शुक्रगुजारी इससे नहीं होती कि आपको चीज मिली कि नहीं मिली। शुक्रगुजार, जिसने शुक्रगुजार होना होता है वो हर हालात में शुक्रगुजार होता है। एक इमाम औज़ाई कहते हैं, एक उनके साथी के साथ वो साहिले समुंदर पे गए, वहां पे उन्होंने एक टेंट देखा जिसमें अबू कुलाबा को देखा, ताबई थे ठीक है, तो उनके ना हाथ थे ना पांव थे ना देख सकते थे, और देखा कि शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का, हाथ पैर भी नहीं तो जाहिर है चल फिर ही नहीं सकते, कुछ अपना काम ही नहीं कर सकते और नजर भी नहीं आता, शुक्र है अल्लाह तूने मुझे बड़ा कुछ दिया हुआ है, शुक्र है अल्लाह। और तो इन्होंने को बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने सोचा इसके पास है क्या जिस पे ये शुक्र अदा कर रहा है। तो उनसे पूछा कि किस बात पे आप शुक्र अदा कर रहे हैं? तो फरमाते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो मेरे ऊपर आग फेंक देता, पहाड़ मुझे कुचल देता, या ये समंदर, समंदर के किनारे थे ना, साहिल पे थे, या से समंदर मुझे डबो देता, या जमीन मुझे निगल जाती, तो मैं क्या शुक्र ना अदा करूं? उसने मुझे जुबान दी है तो क्या मैं शुक्र ना करूं? अल्लाह हू अकबर। हम हमारे पास सब कुछ हो भी तो कहते नहीं कुछ भी नहीं है, है ही नहीं कुछ। इमाम ज़ाही फरमाते हैं, आपको कोई मदद चाहिए? कहने लगे कि मेरा बेटा है जो 3 दिन से गुम हो गया है, वो मुझे वुजू करवाता था, खिलाता पिलाता सारा चीजें मतलब काम करके देता था, वो मिल नहीं रहा है, उसको बस तलाश करके ला दे। अब ये ढूंढने निकले तो देखा कि कोई जानवर उसको खा चुका था और उसकी लाश वहां पड़ी थी। आए अब वो कहते मैं कैसे बताऊं इनको जाके, कैसे बताऊं कि आपका तो वो बेटा भी गया, हाथ पैर और आंखें तो पहले ही नहीं थी। जाकर कहते हैं ये बताएं अल्लाह के सामने आपकी ज्यादा अहमियत है या अय्यूब अलैहिस्सलाम की? बोले अय्यूब अलैहिस्सलाम की। फरमाया तो आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, औलाद से, माल से, हर तरह से आजमाया। फरमाने लगे हाँ। फरमाया और आपको पता है कि उन्होंने सबर किया और शुक्र किया और रब की तस्बीह की? फरमाया हाँ। फरमाया और उनके दोस्त अहबाब सब उनको छोड़ के चले गए? फरमाया हाँ। फरमाया जब उनके साथ ये सब हो गया तो रब ने उनको कैसा पाया? बोले शुक्र करने वाला और तारीफ करने वाला। फरमाया तो आप पर अल्लाह की रहमत हो, आपका भी बेटा फौत हो गया? बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये बेटा कुछ वक्त के लिए तो दे दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ देर के बाद वो फौत हो गए। कहते हैं रात को मैंने उसको ख्वाब में देखा, वो बड़े अच्छे हाल में थे और एक आवाज थी सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। जन्नत में ये सुनाया जाएगा ना, सलामती हो तुम पर इस वजह से कि जो तुमने सबर किया। निअमा उकबद्दार, और कितना अच्छा है आकबत का घर। अल्लाह हू अकबर। तो ये है कि जो शुक्र गुजार बंदा होता है ना, वो शुक्र के मौके ढूंढ ही लेता है, और जो नाशुक्रा होता है उसको कहीं कोई चीज नजर ही नहीं आती कि जिसपे वो शुक्र अदा करे। वा अलकाफिल अर्दी रवासिया, और उसने डाल दिए जमीन में पहाड़ों को। ये ऊपर ऊपर नहीं पड़े हुए, ये जमीन के अंदर है, गड़े में है। अंतमीदा बिकुम, कि डगमगा जाएगी तुम्हारे साथ, कि ये ना हो कि ये जमीन ढलक जाए तुम्हें लेकर। बिकॉज ये जो जमीन थी ना, ये इतनी ज्यादा ऐसी थी कि जब बनाई अल्लाह ताला ने तो ये इतनी जोर से हिलती थी, इसके ऊपर रहना पॉसिबल नहीं था। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर जैसे मेखे गाड़ देते ना आप, कील ठोंक देते, इस तरह कील की तरह पहाड़ों को ठोंक दिया इसके अंदर। तो अब ये जमीन स्टेबल हो गई। अब आपने जब इंशाल्लाह किसी जगह पे पहाड़ देखना है तो आपने यही सोचना है कि अल्लाह ताला तेरा कितना शुक्र है कि तूने इसको गाड़ दिया कि जमीन पे जलजले ना आए, वरना जमीन हिलते ना था, हमने कैसे यहाँ पे रहना था। पता है कई चीजों का ना हमें एहसास नहीं होता। कभी हमने थोड़ी कभी पहाड़ों के ऊपर शुक्र अदा किया, अल्लाह पहाड़ भी हैं तेरा शुक्र है। नहीं, हम देखते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, फिर हमें खुश होते हैं, लेकिन कभी इस तरह से नहीं हम कहते कि उनको देख के भी हमारे अंदर कोई शुक्रगुजारी का एहसास हो। असल में हमें शुक्रगुजारी अक्सर तब आती है जब हमारे पास वो नेमत नहीं होती ना, तो फिर हम कहते हैं हाँ ये तो बड़ी नेमत थी। अब ये कोविड के दिनों ने हमें सिखा दिया कि देखें इस नेमत की भी हमने कभी शुक्रगुजारी नहीं की थी कि हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई मिलने में मसला नहीं है। जब कोविड आया तो अल्लाह अकबर, आपस के अंदर रिश्तेदार भी एक दूसरे को मिल नहीं सकते थे, दोस्त अहबाब दूर दूर से एक दूसरे को खड़े होकर देख रहे थे और एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते थे, लोग एक दूसरे से डरने लगे थे, इंसान इंसान से खौफजदा हो गया था। कितनी जगहों पे मैंने देखा गैर मुस्लिमों ने भी लिखा हुआ कि हम कोविड के बाद हमारी सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे अपने दादा दादी से मिले, नाना नानी से मिले, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सके, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलकर हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख सके, एटलीस्ट उनको हग कर सके। हमने कभी इस नेमत का आज तक शुक्र अदा किया था? हमें तो पता ही नहीं था ये नेमत है, हमें पता ही नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो बेशुमार नेमते हैं आगे जिनकी बात आ रही है, वह अनहारन और नहरें, वह सुबन अल्लाह अल्लाह कुंता तदून, और रास्ते अल्लाह ताला ने बना दिए, लेकिन जमीन को ऐसा नहीं बनाया कि बस सपाट है, इसके अंदर कोई रास्ता ही ना हो। पहाड़ों के बीच में भी नहरें भी हैं और नहरों के साथ साथ रास्ते भी जा रहे होते हैं पानी के। आप देखते हैं ना चश्मे होते हैं, कई जगह से पानी जा रहा होता है बहुत ही खूबसूरत, ताकि तुम हिदायत पाओ, क्योंकि रास्ता जो है जब इंसान राह पा लेता है तो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो ये हिदायत के सामान है हमारे लिए, इनसे हिदायत मिलती है। वह अलामात और अलामतें रख दी इन जमीन के ऊपर भी, अल्लाह ताला ने नेचुरल अलामतें रख दी। ऐसा कोई जगह पे आप ऐसे नहीं जाएंगे कि बिल्कुल जैसे मसलन सहरा है, डेजर्ट है ना, उसमें कोई अलामत नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता। अब क्या है, सपाट जमीन है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता, उसमें चलना कितना मुश्किल है। इसीलिए तो बनी इसराइल 40 साल तक वहीं घूमते रहे उसी सहरा के अंदर, वहां से जाते थे और सुबह से चलते थे शाम को वहीं पहुंच जाते थे, रास्ता ही नहीं मिलता था। इसी तरह सारी जमीन अगर होती तो हमने तो कहीं पहुंचना ही नहीं था। अब इन चीजों की भी हमें कदर इसलिए नहीं है ना कि हम तो रोज रास्तों से जाते हैं, रोज इसको देखा हुआ है, सजी सजाई हमें हर चीज मिल गई भी है, हमें कहां ये पता है कि कोई ऐसा भी हो सकता था कि रास्ते ही ना होते, हम कैसे जाते फिर? ऐसा ना होता कि पहाड़ ही ना होते, अंदर उनके पानी के रास्ते ना बने होते। अल्लाह ताला ने ये अलामात रख दी, कई अलामात रख दी, और इसका ये भी मतलब है अल्लाह ने और कई निशानियां रख दी। अल्लाहु अकबर। व बिन नजमी, और सात सितारों के, हम यहतदून, वो हिदायत पाते हैं सितारों से, रास्ते पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सितारों को भी अल्लाह ताला ने हमारे काम में लगा दिया, ये चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, हमें खूबसूरती भी लगती है और इनसे आप रास्ता भी पाते हैं समंदरों और सहराओं में। अम्मई यखलुकु कमल ला यखलुक। अब ये सारी बातें कहके क्या फरमाया? अच्छा एक सवाल है, इसका तो बताओ, इसका जवाब तो दो, क्या वो जिसने पैदा किया सब कुछ को उसी ने पैदा किया ना, वो जिसने पैदा किया क्या वो उस जैसा हो सकता है जिसने कुछ भी ना पैदा किया हो? देखिए एक वो है जिसने सब कुछ ये पैदा किया, कितनी सारी नेमतों का यहां जिक्र किया, और इसके अलावा भी हर चीज को जिसने पैदा किया। अब सवाल ये है, तुम तो किसी और को जाके पूछते हो, तो ये पैदा करने वाला और जिसने ना, जो पैदा ही ना कर सके, दोनों बराबर हो सकते हैं? मुशरिकीन तो मानते ही थे कि उनके माबूदों ने तो कुछ नहीं पैदा किया, तो उनको कहा गया कि बताओ कि वो उसको फिर तुम अल्लाह के साथ खड़ा कर दो, अल्लाह के बराबर ले आओगे? वो तो पैदा कर भी नहीं सकते, और बल्कि खुद पैदा हुए हैं, तो खालिक और मखलूक क्या एक जैसी हो सकती है? उनको किसी ने पैदा किया ना, वो मखलूक है, खालिक नहीं है। खालिक और मखलूक एक जैसे हो सकते हैं? बराबर तो दूर की बात है, किसी दर्जे में भी वो खालिक की तरह नहीं हो सकते। और इवन कोई भी नहीं हो सकता, कोई कितना ही बड़ा औलिया अल्लाह हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, वो सब मखलूक है, वो कितनी भी बुजुर्ग हस्ती हो, लेकिन वो खालिक नहीं है। अफला तदक्करून, फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते, फिर उनके पास जाते हो, फिर उनसे मांगते हो, फिर उनको कुछ समझते हो? अल्लाह ताला के रहम जैसा मखलूक का रहम नहीं हो सकता, अल्लाह की कुदरत जैसी मखलूक की कुदरत नहीं हो सकती, अल्लाह ताला के इल्म जैसा मखलूक का इल्म नहीं हो सकता। किसी दर्जे में भी मखलूक अल्लाह की किसी सिफत के जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला लैसा का मिसली शई उन, लैसा का मिसली शई उन, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो फिर किस तरह से तुम औरों को साथ बिठा देते? हम जब कहते हैं ना अल्लाह हू अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि हम एक कमरे के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं तो हम कहें ये वाला सबसे बड़ा है, ये नहीं है मतलब। क्योंकि जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर है तो अल्लाह ताला की बड़ाई इस तरह से नहीं कि अच्छा ये सारे हैं ये भी बड़े हैं लेकिन इनमें सबसे बड़ा अल्लाह, नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है दूसरों के साथ, कोई कंपैरिजन नहीं। खालिक की जो बड़ाई है और मखलूक की, उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं हो सकता। ठीक है, वो इतना बड़ा है कि उसकी बड़ाई का कोई तस्वुर भी हमारे ना जहन में नहीं आ सकता, उसकी बड़ाई का कोई जरा सा भी तस्वुर। और जितने अंबिया औलिया सब मिल के भी वो मखलूक ही रहेंगे चाहे वो कितने ही ऊपर पहुंच जाए, खालिक तक नहीं पहुंच सकते, वो खालिक नहीं बन सकते। वो इतना बड़ा है, उसकी बड़ाई का तस्वुर हमने क्या करना है, हम तो उसके अर्श का ही तस्वुर नहीं कर सकते। उसका अर्श कितना है दुनिया के मुकाबले में, दुनिया कह रही हूं कायनात के मुकाबले में। कायनात से पता है आपको क्या मतलब है, ये सारे जितने सितारे सैयारे ये कहकशाएं जो गैलेक्सीज हैं ये सब, ये सब बन मिलके कायनात बन जाए। ठीक है, आपको अपनी भी जरा थोड़ा बता दूं, अपने हालात भी जरा सुन लें कि इस जो एक बहुत बेशुमार गैलेक्सीज हैं उनमें अरबों खरबों सितारे हैं, अरबों खरबों सितारे हैं, ट्रिलियंस, वो कहते हैं ट्रिलियन, साइंसदान कहते हैं गिन नहीं सकता इंसान, अगर हर सांस के ऊपर एक सितारा गिनने लगे, ये साइंसदानों ने लिखा, तो इंसान मर जाएगा लेकिन उससे नहीं सितारे गिने जाएंगे। ये एक गैलेक्सी में अरबों खरबों हैं और बेशुमार गैलेक्सीज हैं, और उन हमारी गैलेक्सी के अंदर एक हमारा निजामे शमसी है जिसका छोटा सा, बड़ा नहीं है, ये दूसरे सितारों के मुकाबले में बड़ा नहीं है, सूरज एक छोटा सा सितारा है। ठीक है, स्टार एक स्मॉल, बहुत छोटा सा सितारा है, इसको स्टार कहते हैं। ठीक है, इस हमारे निजामे शमसी में प्लैनेट्स हैं ना? अब कोई बड़ा कोई छोटा, इनमें एक हमारी जमीन एक मामूली सा प्लैनेट है। अब इंसान की देखें हिम्मत और इसकी कमजोरी का हालत क्या है कि अभी तक इंसान का कदम अपने करीबी प्लैनेट मार्स पे भी नहीं पड़ा जो सबसे करीबी है। बड़ा तीर मारा इंसान ने, चांद पे कदम रख लिया, चांद तो कुछ भी नहीं है। अभी ये जो हमारा निजामे शमसी है ना, ये जो पूरा हमारा सिस्टम है जिसमें हमारे प्लैनेट्स और सूरज है, इसके बारे में साइंसदान कहते हैं कि ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, इसके इस कहकशां के एक कोने पे पड़ा हुआ एक जर्रे के बराबर है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। इस जर्रे, इस पूरी कहकशां में एक जर्रा है, पूरा हमारा निजामे शमसी, इसमें हमारा सूरज भी, हमारे ये जितने चांद हैं हर प्लेनेट के, वो सारा कुछ उसमें, एक जर्रे के बराबर हमारी जमीन, उसमें एक जर्रे के बराबर हमारा मुल्क, उसमें एक जर्रे के बराबर हमारा शहर, उसमें एक जर्रे के बराबर हमारा घर, कहीं नजर भी ना आए, उसमें एक जर्रे से भी छोटी हमारी हैसियत, ये इतनी सी है हम। तो जो जिसका निजामे शमसी इतना छोटा है, वो इंसान क्या औकात क्या, जिसकी जमीन ही एक डॉट से आगे नहीं है, जिस उन्होंने कहा ये आपका निजामे शमसी है ऐसे जैसे साहिले समुद्र के पर रेत का एक जर्रा पड़ा, इतने छोटे हैं और हकीर हैं आप। तो आपने और कहकशाओं में क्या जाना, आपने और मिन कतारे समावाती बल अर्थ कहाँ जाना है, आपने किनारों पे आसमान और जमीन के, आप तो यहां से ही नहीं निकल सके। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें जहां पे एक डॉट की हैसियत भी नहीं है हमारे इसकी, कि कहकशां कितनी बड़ी होगी सोचे, और इतनी और कितनी कहकशाएं हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं। अब ये सारी कायनात बन गई ना, इस कायनात की हैसियत अल्लाह तआला के अर्श के आगे कितनी है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक लखो दख सहरा है, बहुत बड़ा दूर दूर तक सहरा है, उसके अंदर एक छल्ला पड़ा हुआ है, एक अंगूठी या एक हलका कह दें आप, वो पड़ा हुआ है, जैसे ये हलका है ना, जैसे इसकी निस्बत है सहरा से, इसका रेशो आप देख लें, इसकी इसका साइज या इसकी हैसियत देख लें सहरा में क्या है, इस तरह ये पूरी कायनात की अल्लाह ताला के अर्श के मुकाबले में है। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, जिसका अर्श इतना बड़ा हो वो जात कितनी होगी, और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं मखलूक से, जो खुद बाथरूम जाते हैं और फिर मर जाते हैं और फिर कब्रों में उनको दफनाते हैं, और उनको गुस्ल देने के लिए भी उनके पास कोई ताकत नहीं होती, वो अपने आप को खुद भी गुस्ल नहीं दे सकते, उनको गुस्ल भी कोई दिला रहा होता है। अब कह रहे हैं ना, हम कहते हैं नहीं, ये तो बुतों की बात हो रही है, ये थोड़ी इंसानों की। तो बुत कहां से आए भाई? बुत भी तो इतने वो पागल नहीं थे कि बस बुत बना के तो उनके आगे खड़े हो जाते, वो भी तो इन्होंने नेक इंसानों के ही बुत बनाए हुए थे, पीछे तो इंसान ही थे, पीछे तो शख्सियात ही थी जिनकी वो पूजा करते थे। तो इस इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं, वो कैसे उस रब का मुकाबला कर सकता है? कुछ कोई मुकाबले की बात ही नहीं इसमें। तो इसलिए शिर्क ये भी है कि अल्लाह ताला के जो लायक शान सिफात है उनको आप मखलूक में समझना शुरू कर दे, कि मखलूक भी किसी ना किसी दर्जे में तो वो भी हमारे काम बना सकते हैं, किसी ना किसी दर्जे को तो उनको भी इल्म-ए-ग़ैब है, किसी ना किसी दर्जे में तो उनके पास भी ताकतें हैं, तो तब शिर्क ही हो गया। याद रखें, खालिक अलग है और मखलूक अलग है, कभी भी इस गुमराही में ना पड़े। जिनको नहीं पता वो ना जाने, जिनको पता है उनको बता देती हूँ, ये जो वहदतुल वजूद का अकीदा है इतना गुमराही का अकीदा है। हालांकि कैसे है कि खालिक और मखलूक एक हो जाए? कैसे हो सकता है एक कायनात और अल्लाह एक ही है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि वो अल्लाह ताला में अस्तग़फिरुल्लाह वो मर्ज हो जाते हैं, उसमें जम हो जाते हैं, और ऐसे ये क्या अकीदे हैं, ये तो गुमराही है। खालिक अलग है, मखलूक अलग है, मखलूक कभी खालिक के अंदर जम नहीं हो सकती, मखलूक कभी खालिक तक नहीं पहुंच सकती। आप आला तुम नसीहत नहीं पढ़ करते। और ये अब क्लाइमेक्स आयत आ गई, क्लाइमेक्स आयत आ गई, जो हम सूरह इब्राहिम में भी पढ़ चुके हैं ये आयत। और ये वो बात है जो कि आपको सारी नेमतें बता दी गई ना, सारी तो नहीं, मतलब चंद एक नेमतें बता दी गई ना, अब बता दिया गया कि नेमतें तो इतनी हैं कि इन ताउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, तुम तो गिन ही नहीं सकते नेमतों को, इतनी नेमतें हैं। गिनना क्या है, हमें तो पता भी नहीं नेमतों गिने गिनेंगे कैसे, और जब ना पता है ना गिन सकते हैं तो आगे उसका शुक्र तो कैसे अदा करेंगे, शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। तो बड़े बड़े तुमने आज कंप्यूटर भी लगा लिए हैं ना, वो सारे कंप्यूटर भी नेमतों को नहीं गिन सकते। अब ये देख लेना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कोविड में ये जो सोशलाइजिंग की, एक दूसरे से मिलने जुलने की नेमत थी, वो हमें थोड़ी पता था, हमने क्या शुक्र अदा करना था, तो हमने तो गिनना भी नहीं था क्योंकि हमने आज तक पता ही नहीं उस नेमत। पहाड़ों की नेमत का पता था, कि पहाड़ भी कोई नेमत है, इनका कभी शुक्र अदा किया नहीं, वो मुझे तो एहसास भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। हमारी अपनी जान के अंदर, हमारे अंदर जो सब कुछ निजाम चल रहा है उसमें हमें कितनी नेमतें मिली हैं, हमें तो उनका पता ही नहीं। और दिमाग चल रहा है तो वो चल रहा है, हमें क्या पता ये किस किस तरह चल रहा है, कैसे इसको सिग्नल जाते हैं, सांस चल रही है तो उसका क्या निजाम है, मुझे क्या पता। तो मैं इस नेमत को कैसे गिनूं और कैसे शुक्र अदा करूं? तो शुक्र, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर नेमत एहसान है और हर एहसान पे शुक्र गुजारी करना जरूरी है। तो जब नेमतें ही लातादाद हैं, इतनी हैं जिनका हमें पता ही नहीं, तो अब आप अंदाजा करें कि फिर अगर पता ही नहीं शुक्र कहां से होगा, तो हम तो सारी जिंदगी शुक्र नहीं अदा कर सकते, फिर नहीं अदा कर सकते। अगर जब से पैदा हुए मौत तक हम एक लम्हा भी शुक्र से खाली ना हमारा रहे, तब भी हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते। इसलिए कि नेमतें ही हर लम्हे में ना, ऐसे नहीं कि हमें एक नेमत मिल रही है, हर हर सेकेंड मिली सेकेंड के अंदर भी हमारे पर करोड़ों लातादाद नेमतों निछावे रो रही हैं, लातादाद। मैं अब इसकी डिटेल में अगर छाऊं तो ये तो एक आयत ही मैं सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। कितनी नेमतें हैं जो हमारे इस वक्त मैं बैठी हुई है, इस वक्त मेरे पर कितनी नेमतें हैं, खुद सोचें आप, क्या एक नेमत ही है इस वक्त आपके पास? बेशुमार तो करोड़ों तो हमारे अपने जिस्म के अंदर ही चल रही है, उसके अलावा हमारे इर्द गिर्द है। ये तो नेमतें अल्लाह ताला ने इतनी अता की, और सूरह इब्राहिम में हम पढ़ के आए हैं यही बात, इन ताउदू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, लेकिन उसके बाद वहां पे क्या है और यहाँ पे क्या है। देख, ये दो जगहों पे ही कुरान पाक में ये बात आई है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे इन्नल इंसान लज़लूम कफार, इंसान तो बड़ा ही जालिम बड़ा ही नाशुक्रा है, इनकार करता है अल्लाह की नेमतों का, मानता ही नहीं। और यहाँ पे क्या है, इन्नल्लाह लगफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। यानी आप देखिए व्हाट अ ब्यूटी कि एक जगह पे कुरान में ना बात की है रिसीविंग एंड की, लेने वाले की, और दूसरी जगह यहाँ पे बात की है देने वाले की। एक तरफ लेने वाला, एक तरफ अता करने वाला। अब लेने वाले का रवैया वहां बताया और देने वाले का रवैया यहां बताया। अल्लाह अकबर। अब रवैया होना क्या चाहिए था कि कयामत तक भी तुम लगे रहो तो गिन भी नहीं सकते जिस मौसम के एहसानात तुम्हारे पर इतने ज्यादा हैं। तो तुम सोचो कि फिर इन रिटर्न तुम्हें कैसा होना चाहिए था, इतने एहसानात जिसके हूं उसके साथ तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए। आप दुनिया में भी तो आप लेन देन करते हैं ना, आप किसी के ऊपर एहसान करते हैं, वो आपके साथ क्या करता है आपको सब पता है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे। दूसरा मेरा एहसान मान लो, अगर वो थोड़ा आंख उठा के बात कर ले, बेतवज्जो ही कर ले, तो आपको कैसा फील होता है, कितना गुस्सा आता है, और आप कहते हैं आइंदा मैंने नहीं इसके साथ कोई एहसान करना, देखो इसको ये इसने एहसान मंदी का मुझे सिला दी, और गुस्सा भी आता है, आइंदा के लिए तौबा भी कर लेते हैं आप एहसान करने से। तो यहां पे देखें जो अता करने वाला है, जो देने वाला है, होना तो ये चाहिए था कि तू जलूम और गफार है तो चला जा, अब तुझे भी नहीं कोई नेमत मिलेगी। लेकिन जो इतनी नेमतें दिन रात हर सेकंड में दिए चले जा रहा है, दिए चले जा रहा है, दिए चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, हर लम्हे दे रहा है इतनी कि जो गिनती में ही नहीं आ सकती, वो कैसा है। वो तुम इतना शुक्र नहीं भी अदा करते या नहीं भी कर सकते तो वो बंद नहीं करता नियमतों को, वो फिर भी गफूर रहीम है, वो फिर भी गफूर रहीम है। क्योंकि अगर वो तुम्हें पकड़ने लगता कि तुम उसकी नाशुक्री कर रहे हो, तुम्हें तो होना ये चाहिए था कि अपनी जिंदगी दे देते उसको, तुम्हें होना ये चाहिए था एला तो इतनी नेमतें मेरे ऊपर, मेरी सारी तवानाइयां तेरे लिए, मेरी कुवतें तेरे लिए, मेरा इल्म तेरे लिए, ए अल्लाह मेरा हर लम्हा तेरे लिए। उसने तो ऐसा मुंह फोड़ फेरा कि उसने तो तवज्जो ही देनी नहीं गवारा की, उसने पहचानना ही गवारा नहीं किया कि मुझे नेमतें देने वाला कौन है। वो तो दूसरों के दर पे जाके झुका, वो तो उनके गुण गाने लगा। कितनी बेइंसाफी की इंतहा है कि खाए किसी का और गुण गाए किसी और के, ले किसी से और तारीफें किसी और की करे, रहता बसता किसी की जमीन पे हो और चर्चे किसी और के, माथे कहीं और टेके, जुबान के ऊपर गुण किसी और के हो। अब होना तो यही चाहिए था ना कि सब कुछ खत्म कर दिया जाता, कभी इसको कुछ ना दिया जाता ऐसे नाशुकरे को, लेकिन वो गफूर और रहीम है। होना तो ये चाहिए था कि तुम बिछ बिछ जाते, कभी सर ना उठाते, कभी आगे से चू ना करते, कोई तकलीफ भी आती तो कहते जो मिजाजे यार में आए, तू राजी तो मैं राजी, मैं क्या चीज हूं, कभी लब पे शिकायत ना आती। लेकिन हुआ इसके उलट, कभी जुबान शिकायतें करना बंद ही नहीं करती, शिकवों के अंबार है, नाशुक्री की इंतहा कर दी इस इंसान ने, उठते बैठते नाशुक्री। तारीफें की तो लोगों की, इंसानों की, चीजों की, लोगों के टैलेंट्स की, लोगों की किसी सिफत की ना की तारीफ तो उस रब की ना की। लोगों से कहा जी आपका ताबेदार मैं आपका गुलाम, ना कहा तो अल्लाह को ना कहा, झुका तो दूसरों के आगे झुका, उसके आगे ना झुका। जान पहचान की इल्म लिया तो हर दुनिया की चीज का ले लिया, उसके बारे में ना सोचा, उसके बारे में ना इल्म लिया, उस मालिक को ना पहचान के दिया, सबके लिए वक्त निकाल लिया, सारी दुनिया के लिए निकाल लिया, हर एक के लिए निकाल लिया। सारी जिंदगी में ना वक्त निकल सका तो खालिक के लिए ना निकल सका। ओह, ये नेमतें इतनी जिनको गिना ना जा सके, और इसका रवैया ऐसा कि इससे ज्यादा जालिम और नाशुकरा कोई नहीं। इसने तो अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी। सोचें आपके दो चार एहसानात के आगे ही कोई आपके साथ बुरा करे तो आप नाराज हो जाएं, उसे कता ताल्लुक कर लें। चाहिए तो ये था कि वो रब भी नाराज हो जाता और सप्लाई कट कर देता। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, तुम्हारा पानी बंद, तुम्हारा खाना बंद, तुम्हारा रिस्क बंद। तुमने क्या समझा हुआ है? जुल्म और कफार का तो यही होना चाहिए ना, हम तो ऐसे ही करते हैं। मगर वो गफूर रहीम है, फिर वो दरगुजर करता है, जाने देता है, रहम करता है, फिर वो दिए चला जाता है। उस रब की शान देख ले, वो दरगुजर का रवैया रखता है, माफ कर देता है। और जो शुक्रगुजारी करते भी हैं वो भी थोड़ी इतनी कर सकते हैं जितनी होनी चाहिए, तो उतनी नहीं कर रहे, तो वो भी तो एक कमी है ना। उस मालिक का हक था कि उसकी जितनी शुक्रगुजारी की जाए, नहीं कर रहे ना, तो फिर इसका मतलब है कि कमी हुई ना। इसके ऊपर भी फिर इंसान तौबा इस्तगफार करता है कि अल्लाह उतना नहीं कर सका जितना करना चाहिए था। लेकिन इंसान कहता है मैं तो मानता ही नहीं खुदा को, उसे मुंह मोड़े रखता है, उसको छोड़े रखता है, उसे नाराज होता है, उसे बेतवज्जही बरतता है, गाफिल रहता है, सारी जिंदगी उसका नाम लेना गवारा नहीं करता। और वो अता किए जा रहा है, अता किए जा रहा है, अता किए जा रहा है, मोहलत दिए जा रहा है, मोहलत दिए जा रहा है। वो गफूर रहीम है, तुम फिर नहीं भी शुक्र करते ना। लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी एहसास हो जाए ना कि उस मालिक ने मेरे ऊपर बड़े एहसान किए हैं, और तुम अपनी आखिरी सांस पे भी एहसास कर लो और तौबा कर लो, तो वो गफूर रहीम, ये है वो अल्लाह, ये है वो रब। जानना चाहते हो उसको? ये है कुरान जो बताता है तुम्हारा रब कैसा है। अल्लाहु यालमु मा तुसिरून व मा तुलिनून, वो सब जानता है जो करतूत तुम करते हो और जिनको जाहिर करते हो, जिनको छुपाते हो, लोगों से छुप के जो करते हो और लोगों के सामने जो। वल्लदीन यदउन मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकून शैअ वहुम यखलकून, अब ऊपर वाली बात की कंटिन्यूएशन कि जिनको तुम पुकारते हो ना अल्लाह के सिवा, जिसको भी पुकारते हो, कोई फरिश्ता है या कोई नबी है या कोई भी है, उन्होंने ला यखलुकुना शैअन, कोई भी चीज पैदा नहीं की, कोई भी चीज। वहम यखलकुन, और वो सब पैदा किए जाते हैं। जो खुद पैदा किया गया हो वो तो मोहताज है ना, इसका मतलब वो खुद तो अपने आप को पैदा नहीं कर सकता था, तो इसका मतलब मोहताज ही हुआ ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई मुझे पैदा करे, तो वो किसी के क्या काम बनाएगा जो खुद मोहताज है, खुद सोचे। फिर भी नहीं समझ आती। अमवातुन गैरु अहयाइन, और क्या है वो? पहली उनकी बात क्या बताई कि वो नहीं पैदा कर सकते, दूसरी क्या बात बताई वो तो खुद बेचारे पैदा हुए हैं, तीसरी क्या बात बताई अमवातुन गैरु अहया, वो मुर्दा है जिंदा नहीं। अब चाहे वो बुत है, लोग कहते हैं नहीं ये बुतों की बात हो रही है, ये इंसानों की नहीं, बुत भी तो इंसान ही थे कभी, वो भी तो जिंदा ही थे, हस्तियां थी, उसके बाद ही मरे हैं, तो वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। चाहे कब्रों की बात कर लो, चाहे बुतों की बात कर लो, चाहे किसी की भी बात कर लो, जिस भी मुर्दा को कोई पूजता है। वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, उनको तो ये भी नहीं पता वो कब उठाए जाएंगे, वो तो इतने बेबस हैं, उनको तो ये भी नहीं पता हम उठेंगे कब अपनी कब्रों से, कब हम यहां से निकलेंगे, वो कब्रों में पड़े हुए हैं। अगर वो इतने ही कादिर होते चीजों पे तो कब्रों में क्यों होते? दूसरी जगह फरमाया ना, ये मिल्क एक मक्खी बनाना चाहिए, मक्खी भी नहीं बना सकते, मक्खी तो क्या बनाएंगे, मक्खी इनसे कोई चीज छीन के ले जाए ना तो ये वो भी नहीं वापस ला सकते। अगर बैठे हुए हैं पीर साहब और वो खाना खा रहे हैं और मक्खी आगे उनके खाने में बैठ गई और कुछ उड़ा के ले गई है, वो छीन नहीं सकते, उसके पीछे भाग के उसको पकड़ नहीं सकते। दाल फत्ता वाली बुगल मतलूब, अल्लाह ताला ने फरमाया कितना कमजोर है मांगने वाला भी और जिसे मांगा गया, दोनों ही। उस खालिक, उस कायनात के मालिक को छोड़ के तुम इन हस्तियों के पास जाते, तुम्हारी मत मारी गई। जिसको भी तुम पुकारते हो वो कोई भी है, अल्लाह को छोड़ के वो कोई भी हस्ती है, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात क्यों ना हो, वो भी मखलूक है, वो खालिक नहीं है। तो इसलिए तौहीद का अकीदा सही करने की जरूरत है। हम कह देते हैं नहीं जी वो पैसे नहीं मांगते, पैसे नहीं मांगते, हम उनके पास जाके चीजें मांगते हैं, वो हमसे पैसे थोड़ी लेते हैं। वो पैसे क्यों मांगेगा, जिसने तुम्हारे तुम्हें ही खरीद लिया वो पैसे क्यों मांगेगा, तुमने अपना आप ही उसको बेच दिया, तुम्हारे तो पैसे खुद ब खुद उसके हो गए, या तुम्हारा अकीदा उसके ऊपर इतना पुख्ता हो गया। तो तुम जिसको पुकारते हो उनके हाथों में कुछ नहीं, फिर तीसरी सिफत ये हो गई कि वो तो मुर्दा है, और चौथी ये हो गई, और पांच नहीं ये थर्ड हुई, और चौथी ये हो गई वमा यशऊरून, और नहीं वो शऊर रखते अय्याना युबअसून। अल्लाह ताला इन आयात को हमारे दिलों में उतार दे, हमें शुक्रगुजार बना दे, और अल्लाह ताला इन आयात के जरिए हमारे अकीदे को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे चलाए, और तौहीद के साथ ही हमें दुनिया से उठाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
بسم الله الرحمن الرحيم
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل أعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون